नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में दो तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इन्क्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबुधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबुधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वलीशेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।